उस गाड़ी में एक नकाबपोश आदमी था किसने आस्था को खींचा था, और फिर वो सिंघानिया मेंशन की ओर चुनौती वाली नज़रों से देखने लगा था और सीधा आस्था को लेकर आगे बढ़ गया। खुशी के माहौल में किसी ने भी इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। अब जैसे ही अरमान ने वो दृश्य देखा, उसके हाथों की एक एक नस तक साफ दिखाई देने लगी थी, जिसे देखकर सबको पता चल रहा था कि वो इस वक्त अपने गुस्से को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। सिंघानिया मेंशन के बाहर रात का सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। सिंघानिया मेंशन में खड़ा अरमान लगातार स्क्रीन पर नजर गड़ाए हुए था। जिस तरीके से आस्था को अगवा करके ले जाया जा रहा था, ये सारी बातें बार बार अरमान रिपीट करके देखे जा रहा था, और उसकी आंखों में ब्लड शॉट होने लगे थे, खून तक जमा होने लगा था, उसके हाथ खतरनाक दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि खतरनाक ठंडक थी। अरमान ने धीमी लेकिन बेहद ठंडी आवाज में कहा, सम्राट, उसकी मुठ्ठियां कस गईं, तुमने मेरी दुनिया को छूने की गलती कर दी। अरमान ने उसी पल उसने फोन उठाया, पूरे शहर को लॉकडाउन कर दो, आज रात कोई भी सड़क खाली नहीं रहेगी। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, मौत, बेरहम मौत, उसकी जिसने उसकी दुनिया छूने की कोशिश की। तभी अचानक उसका फोन फिर से बज उठा। वहीं दूसरी ओर काली एसयूवी के अंदर बैठा आदमी लगातार आस्था को देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सा पागलपन चमक रहा था। वो और कोई नहीं, सम्राट था। उसने धीरे से कार की खिड़की नीचे की ओर मुस्कुराते हुए बोला, आखिरकार तुम मिल ही गई आस्था। उसके साथ बैठे आदमी ने घबरा कर कहा, सर, ये ठीक नहीं है, अगर अरमान सिंघानिया को पता चल गया तो। सम्राट अचानक जोर से हंस पड़ा, अरमान? उसकी आंखों में खतरनाक चमक आ गई। मैं उसी अरमान को तो चुनौती देना चाहता हूँ। और जल्दी ही उसने अपने डरे हुए आदमी की गर्दन मरोड़कर उसे गाड़ी से नीचे फेंक दिया और बोला था, मुझे इस बात से भी जलन होती है कि कोई मुझसे ज्यादा उस अरमान से डरता है। फिलहाल उसने आस्था की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, उसे लगता है कि वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अब मैं उसे दिखाऊंगा कि असली खेल किसे कहते हैं। सम्राट सोचने लगा कि उसने किस तरह से प्लान करके मक्कारी से आस्था को अगवा किया था। जैसे ही उसे पता चला कि रश्मि के स्वागत के लिए ढोल नगाड़े आने वाले हैं, इस बात का उसने पूरी तरह से फायदा उठाया। अपने आदमी के थ्रू उसने पूरे के पूरे मेंशन के सभी सीसीटीवी कैमरे अंदर से ही बंद करवा दिए थे, और रश्मि के बच्चे के स्वागत के चक्कर में किसी ने सीसीटीवी कैमरों या किसी भी चीज पर कोई खास ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि ऑपरेटर रूम में 24 घंटे गार्ड कैमरों की निगरानी करते हैं। इस तरीके से उसने प्रोजेक्टर को कैमरों के आगे इस तरह सेट कर दिया था कि उन्हें कैमरे बंद हुए दिखाई ही नहीं दिए थे। फिलहाल वो ये सब याद करते हुए मुस्कुराने लगा था। और किस तरह से उसने अपने लोगों को इशारा किया, वही आस्था जब मेंशन में अंदर जाने के लिए आगे बढ़ी थी, उसे लगा उसके पैर के पास कुछ है। वो थोड़ा सा झुकी ही थी कि तभी उसको अचानक लगा कि उसके पीछे कोई है। वो मुड़ी ही थी कि तभी किसी ने पीछे से उसका मुंह दबा लिया। आस्था ने पूरी ताकत से छूटने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसकी नाक के पास एक कपड़ा लगा दिया गया। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखें भारी होने लगी और फिर उसका शरीर ढीला पड़ गया। नकाबपोश लोग तुरंत उसे उठाकर कार की ओर ले गए। एसयूवी का दरवाजा खुला। सम्राट ने खुद आगे बढ़कर आस्था के चेहरे से बाल हटाए। कुछ पल तक वो उसे पागलों की तरह देखता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, इतनी खूबसूरत और इतनी मासूम। उसकी आंखों में अजीब सी दीवानगी थी। अब समझ आया कि अरमान तुम्हारे लिए इतना पागल क्यों है। उसने आस्था की ठुड्डी को हल्के से उठाया और बोला, लेकिन अब तुम मेरी हो। उसके आदमी डरते हुए बोले, सर जल्दी चलिए, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। सम्राट ने अचानक जोर से दरवाजा बंद किया और चिल्लाया, चुप, अभी थोड़ी देर पहले अरमान से डरने वाले के साथ मैंने क्या किया है? क्या ये बात तुम लोग भूल गए हो जो एक बार फिर से अरमान सिंघानिया से डरने की बातें कर रहे हो? अगर तुम लोगों को इतना ज्यादा डर लग रहा है तो मैं तुम लोगों को अभी यहीं से आजादी दे सकता हूँ। ये बोलकर सम्राट ने अपनी बंदूक निकालकर अपने सभी आदमियों की ओर तान दी थी। अब तो सबकी हवा पूरी तरह से निकल गई थी। सभी हाथ जोड़कर घुटनों के बल गाड़ी में ही आ गए थे और हांफते हुए जोर से बोले, माफ कर दीजिएगा, हमें माफ कर दीजिएगा, हमारा इरादा इस तरीके से कहने का नहीं था, हम तो बस यही चाहते हैं कि आप सही सलामत और ठीक ठाक रहें, किंग। तब सम्राट ने अनमने ढंग से अपने आदमियों की ओर देखा और ठहाका लगाकर हंस पड़ा और बोला था, मेरी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। फिर उसने धीरे से आस्था के माथे को देखा और बोला, तुम्हें पता है आस्था, मैंने पूरी जिंदगी में कभी किसी चीज को पाने के लिए इतना पागलपन नहीं किया जितना तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। उसने पागलों की तरह हंसते हुए कहा, अब देखना, जब अरमान को पता चलेगा कि उसकी दुनिया मेरे पास है, उसकी आंखों में खतरनाक चमक आ गई तो वो टूट जाएगा। फिर उसने ड्राइवर को आदेश दिया, गाड़ी स्टार्ट करो। एसयूवी तेजी से अंधेरे में गायब हो गई। उधर उसी वक्त अविनाश गुस्से से चिल्लाते हुए बोला था, पूरे शहर को बंद कर दो, इस काली गाड़ी को हर जगह ढूंढो, अरमान कुछ करो, सब कुछ ब्लॉक कर दो। तभी आहान गुस्से से दहाड़ते हुए बोला था, मैं तो कहता हूँ कि हमें सबको एक साथ ही डाक विला जाना चाहिए, वहाँ जाकर हमला कर देना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि भाभी हमें वहीं मिलेंगी।
ये बोलकर आहान तुरंत कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ अपनी बंदूक लेकर फटाफट बाहर की ओर जाने लगा था। वहीं ध्रुव भी उसके साथ था। सब लोग उसे रोकना चाहते थे क्योंकि न जाने वहां पर कौन सा खतरा छुपा था, कितने खतरनाक आदमी थे और वे लोग आस्था के साथ क्या कर सकते थे। इसीलिए सब उसे अलग अलग तरह से समझाकर रोकना चाहते थे। लेकिन तब तक आहान बिना किसी की सुने तुरंत गाड़ी में सवार होकर वहां से निकल गया था। वहीं अरमान अभी भी शांत चेहरे के साथ खड़ा हुआ था। दादाजी तुरंत अरमान के सामने आए और उसे देखकर बोले, अरमान तूने उन्हें अकेले क्यों जाने दिया? तू अच्छी तरह से जानता है कि डाक विला क्या है और वहां क्या हो सकता है, राजवीर कितना खतरनाक है, जा जल्दी से जाकर उन्हें रोक। वहीं दादाजी की बात सुनकर रौनक पूरी तरह से रोने लगी थी। वंशिका उसे संभाल रही थी, लेकिन अरमान वो अभी भी बिना कुछ बोले लगातार स्क्रीन पर वही सीन बार बार देखे जा रहा था, जब आस्था को नकाबपोशों ने पीछे से मुंह दबाकर पकड़ा था। ये देख देख कर अरमान की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी, लेकिन उसने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। वहीं नानी माँ खुद को संभाल नहीं पा रही थी और फूट फूट कर रोने लगी थी। वो अरमान के पास जाकर उसके पैरों के पास ही बैठ गई और बोली थी, दामाद जी होश में आइए, दामाद जी मेरी गोरी को ले आइए, दामाद जी प्लीज आपको क्या हो गया है, मेरी गोरी को ले आइए, मेरी गोरी। ये कहते हुए नानी माँ पूरी तरह से रोने लगी थी। मनोज जी और सीमा जी जाकर उन्हें संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। फिलहाल क्यूट सा अंश जो कि थोड़ी देर पहले मस्ती कर रहा था, ढोल बज रहे थे और वो भी नाच रहा था, अचानक से वो भी रोने लगा क्योंकि वंशिका ने उसे संभाल रखा था। आहान वहां से निकल चुका था। अंश को रोता देखकर अरमान ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए और सीधा उसे अपनी गोद में ले लिया। अंश की ओर देखते हुए कहा था, अंश सिंघानिया तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं निकलने चाहिए, कुछ नहीं होगा तुम्हारी मामा को। ये बोलकर अरमान ने दादाजी की ओर देखा और बाकी सब की ओर देखकर अचानक ही तुरंत सीधा रूम में चला गया था। अब ये देखकर आकाश और सुमित दोनों ही चौंक गए थे। वहीं दादाजी अब आकाश को देखकर बोले, पता नहीं क्या हो गया है आकाश, तुम तो कुछ सोचो, ध्रुव और आहान वहां गए हैं, जाओ जल्दी से उन्हें रोको। इस तरीके से जल्दबाजी में जोश में आकर काम नहीं लेना चाहिए, हमें दिमाग से काम लेना होगा।
दूसरी तरफ एंजल अविनाश को पूरी तरह से शांत करने की कोशिश कर रही थी। दादाजी की बात सुनकर आकाश और सुमित बोले थे, आप फिक्र मत करें दादाजी, हम भी जाते हैं वहां पर, और जल्दी से दोनों बाहर की ओर जाने लगे थे। लेकिन तभी अभिमान जी ने आकाश और सुमित को रोकते हुए कहा, रुको बेटा रुको। अभिमान जी को देखकर वो दोनों ही रुक गए थे। तभी अभिमान जी ने आकाश को देखकर कहा, अगर अरमान बिना किसी प्रतिक्रिया के इस तरह से रूम में चला गया और आहान ध्रुव की उसने कोई चिंता जाहिर नहीं की, तो इसका मतलब साफ है, कुछ तो ऐसा है जो अरमान हमसे छुपा रहा है। सबसे पहले अरमान से बात करो, उसके बाद जो करना है करो। अभिमान जी की बात कहीं ना कहीं आकाश और सुमित को बिल्कुल ठीक लगी थी। वहीं सुमित डरी हुई नजरों से आकाश को देखने लगा था। आकाश ने एक नज़र हॉस्पिटल की ओर देखकर सोचा, कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि अगर रश्मि गहरी नींद से जाग गई तो उसे सारी बातों के बारे में पता चल जाएगा। अगर उसे ये पता चल गया कि आस्था मिसिंग है तो ना जाने वो कैसे रिएक्ट करेगी। रश्मि को कुछ भी पता नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके शरीर के टांके बेहद ही कमज़ोर हैं और अभी वो पूरी तरह से ठीक भी नहीं है। तभी वंशिका ने कहीं ना कहीं आकाश के मन की कश्मकश को समझ लिया था। वो सीधा आकाश के पास आई और उसकी ओर देखकर बोली, आप बिल्कुल फिक्र मत करें आकाश भैया, मैं रश्मि दीदी का पूरा ख्याल रखूंगी और उन्हें बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं होने दूंगी कि आस्था मिसिंग है। राधिका भी तुरंत आगे आई और आकाश की ओर देखकर बोली, हाँ आकाश तुम फिक्र मत करो, हम रश्मि के साथ ही रहेंगे और उसे बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं होने देंगे। फिलहाल तुम जाओ जल्दी से अरमान से बात करो और उसके बाद आहान और ध्रुव की मदद करो। जैसे ही राधिका ने ये कहा, आकाश ने अपनी आंखों से उन दोनों का शुक्रिया अदा किया और सीधा सुमित के साथ रूम की ओर बढ़ गया। वहीं दूसरी ओर आहान और ध्रुव अपने जोश और बिल्कुल चीर फाड़ कर देने वाले अंदाज में सीधा डाक विला सम्राट के इलाके में जा पहुंचे थे। जैसे ही वो वहां पहुंचे और उन्होंने अपने कदम बाहर रखे तो उनकी आंखें हैरानी के मारे फटी की फटी रह गईं, क्योंकि डाक विला उनके सामने धधकती आग में जल रहा था। पूरा का पूरा डाक विला चला दिया गया था, वहां कहीं भी कुछ भी नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। आहान और ध्रुव दोनों एक दूसरे को बेख्याली में देखने लगे थे। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि डाक विला का इस कदर अंध हो जाएगा। पूरा विला जलकर कोयला बन चुका था। ये दृश्य देखकर दोनों के ही माथे से पसीना बहने लगा था। वहां पर किसी ने खबर दे दी थी कि शहर के बीचों बीच कहीं आग लगी है, इसीलिए वहां ढेर सारी दमकल की गाड़ियां मौजूद थीं जो लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन जिस केमिकल लिक्विड से डाक विला में आग लगाई गई थी उस पर पानी भी असर नहीं कर पा रहा था। आग इतनी आसानी से बुझ नहीं रही थी और जब तक पूरा डाक विला जलकर राख नहीं हो गया तब तक वो आग धधकती ही रही। अब जल्दी से आहान ने ध्रुव की ओर देखा। दोनों तुरंत वापस गाड़ी में बैठे और सिंघानिया मेंशन की ओर रवाना हो गए। आखिर कहाँ है आस्था? क्या आस्था का पता लग पाएगा? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों और सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर तेरे इश्क में।